हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आखिरकार उस लड़की को भेजने के पीछे कौन हो सकता था? ये सच्चाई भी सामने आकर रहेगी। तब नैना ओबेरॉय कड़क और बेरुखी आवाज में बोली, आप बेफिक्र रहिए मिसेस खुराना, हम बहुत जल्द उस लड़की का पर्दाफाश करेंगे। नैना की बातों में झलक के लिए साफ नफरत झलक रही थी। ठीक उसी वक्त ईशान दांत भींचते हुए बोले, हमने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़की हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। क्या जरूरत थी उसे उसी दिन आने की जिस दिन हमारी बेटी की शादी होने वाली थी? जानबूझकर उसने हमारी बेटी की खुशियों पर ग्रहण लगाने के लिए उसी दिन का चुनाव किया वहां आने के लिए। वो चाहती तो किसी और दिन भी आ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सही मौके की तलाश में थी। वाकई हम तो उस लड़की को काफी भोली भाली समझा करते थे, लेकिन वो अंदर से इतनी ज्यादा चालाक निकलेगी हमने कभी नहीं सोचा था। उर्वशी खुराना भी हामी भरते हुए बोली, सबसे बड़ी गलती तो हमारी ही थी जो हमने उसे पहचानने में भूल कर दी, वरना हमने तो उसे एक साफ दिल की अच्छी लड़की समझा था। कितना प्यार, कितना मान सम्मान दिया हमने उसे, लेकिन एक ही पल में वो हमसे हमारा सब कुछ छीन कर चली गई। आखिरकार है तो वो नाजायज ही ना, फिर किस मुंह से वो वहां आई थी? उसे क्या लगता है, किसी ने उसे कुछ पैसे क्या दे दिए, बड़े बड़े बॉडीगार्ड खरीद लिए और एक किराए का जेट मिल गया तो वो खुद को सब चीजों की मालकिन समझने लगी? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, हमें पता है कि वो फिर से जरूर कोशिश करेगी हमारी जिंदगी में वापस आने की। हम सबको मिलकर उसका मुकाबला करना होगा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उर्वशी ने अपनी चिंता खुलकर जाहिर की। ठीक उसी वक्त रणविजय ने सबको शांत करते हुए कहा, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी सिद्धार्थ ने सबके सामने आकांक्षा को अपनी मंगेतर घोषित कर दिया है। शादी एक बार तय हो जाए तो कभी भी हो सकती है। अभी हमें घबराने की नहीं, बल्कि आने वाले ऑक्शन पर ध्यान देने की जरूरत है। नीलामी में हमें हर हाल में वो हार हासिल करना होगा, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दुश्मन, हमारी राइवल पार्टी, उस नेकलेस को पाने की पूरी कोशिश करेगी। वो थोड़ा झुककर बोला, मुझे पता चला है कि इस शहर के सिर्फ कुछ खास परिवारों को ही उस ऑक्शन के लिए इनवाइट किया गया है, किसी और की वहां एंट्री नहीं है। ये सुनकर उर्वशी जी ने अपने गिरेबान को संभालते हुए कहा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो हार कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही घर आएगा। हमारी बहू आकांक्षा ही उसे पहनेगी। वहीं उर्वशी की बातें सुनकर नैना और ईशान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें कल की घटनाओं की याद सता रही थी। कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि अगर झलक सच में दोबारा सामने आ गई तो उनकी पूरी जिंदगी एक पल में फिर से बर्बाद हो सकती थी। लेकिन उन्होंने खुद को समझा लिया था, इस नीलामी के बाद खुराना परिवार की शान और भी बढ़ जाएगी और हमारा परिवार भी उनसे पीछे नहीं रहेगा। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि एक बार फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीडिया में जो बातें चल रही हैं कि खुराना परिवार के बीच मनमुटाव हुआ है, इसी वजह से शादी टूटी है, वो सब अपने आप बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब लोग ऑक्शन में दोनों परिवारों को साथ देखेंगे तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। इसी सोच के साथ नैना ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसने खुफिया तरीके से अपने कुछ खास आदमियों को झलक का पता लगाने के लिए लगा दिया था। वो उसे ढूंढकर हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे। वे बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि झलक दोबारा उनके आसपास दिखाई दे या जिंदा रहे। उनके दिल और दिमाग में साजिशों का तूफान चल रहा था। फिलहाल इस वक्त उर्वशी, रणविजय और बाकी सभी अलग अलग तरीकों से यही बात सोच रहे थे। रणविजय तो हर हाल में अपना मकसद पूरा करना चाहता था, भले ही कभी उसके दिल में झलक के लिए हल्का सा आकर्षण रहा हो, लेकिन वो सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से था। अब क्योंकि सिद्धार्थ का रिश्ता आकांक्षा से तय हो चुका था, रणविजय पूरी तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गया था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि इस बार ऑक्शन में किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होने देगा और हो सके तो उससे पहले ही झलक को ढूंढकर अपने तरीके से रास्ते से हटवा देगा। उर्वशी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो झलक को दोबारा मीडिया के सामने आने नहीं देंगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी और इस बार वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। अपने आदमियों को हर जगह भेजकर वो झलक के बारे में हर जानकारी निकलवाने में लग चुकी थी और जिसके भी हाथ सबसे पहले झलक लगेगी उसे खत्म कर दिया जाएगा। ईशान भी अंदर ही अंदर सोच रहा था, मुझे सबसे ज्यादा बुरा किस बात का लग रहा है, इस बात का कि झलक जिंदा बचकर लौट आई या इस बात का कि उसके साथ बॉडीगार्ड और प्राइवेट जेट थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ऑपोजिशन पार्टी ने जानबूझकर यह सब कराया हो ताकि उनकी बेटी की शादी खराब हो जाए? क्योंकि झलक तो शुरू से ही आकांक्षा से जलती आई है, शायद ये सब उसी दुश्मनी का नतीजा हो, क्योंकि वो आकांक्षा और उसके परिवार को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते थे। आखिरकार आकांक्षा महलों में राजकुमारी की तरह पली बढ़ी थी, जबकि झलक ने जिंदगी के धक्के खाए थे। उसने गांव में एक मामूली सी जिंदगी जी थी और उसके बाद जब उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ तब हालात और भी बिगड़ गए थे। पैसों की तंगी की वजह से वो अपने पिता का ठीक से इलाज नहीं करवा पाई थी। कहीं ना कहीं उसी दर्द और गुस्से को उसने उस परिवार से जोड़ दिया था। कम से कम उनके मन में तो यही धारणा थी कि झलक ने जानबूझकर आकांक्षा की जिंदगी बर्बादी की ओर धकेली और सिद्धार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया, जबकि हकीकत कुछ और भी हो सकती थी, लेकिन वे लोग सच जानना ही नहीं चाहते थे। आकांक्षा पूरी तरह सामान्य दिख रही थी और सिद्धार्थ के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार भी थी। आखिरकार आकांक्षा वैसी ही थी जैसी पत्नी वो चाहता था, शालीन, खूबसूरत और उसके परिवार के मुताबिक परफेक्ट। इसलिए सिद्धार्थ ने ठान लिया कि अब वो आकांक्षा का पूरा साथ देगा। सुबह से ही वो खुद को समझा रहा था, मैं सच में आकांक्षा से प्यार करता हूँ। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, आई एम सॉरी झलक, पहले मैं इस गलत फहमी में जी रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया। तुम्हारी जान चली गई और मैं आखिरी वक्त में भी तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन जिस तरह तुमने अचानक आकर मेरी शादी स्पॉइल की, अब मैं तुम्हें समझ चुका हूँ, तुम मेरे लायक कभी थी ही नहीं। उसने गुस्से से दांत भींच लिए और रोनित को इशारा करते हुए कहा, पूरी की पूरी फोर्स सिर्फ और सिर्फ नेशनल ऑक्शन पर लगा दो, बाकी सब बाद में होगा। सबसे पहले खुराना परिवार की जो शादी ना होने की वजह से बदनामी हुई है उसे कवर करना होगा। ये कहकर सिद्धार्थ ने तुरंत आकांक्षा को फोन लगाया, मैं तुम्हें लेकर शॉपिंग पर जाना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? आकांक्षा ने जैसे ही ये सुना वो खुशी से झूम उठी, क्यों नहीं, मैं अभी तैयार होकर आधे घंटे में तुम्हारे ऑफिस आ जाती हूँ। लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत कहा, नहीं, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ये सुनते ही आकांक्षा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या वाकई ये वही सिद्धार्थ है जो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था और आज खुद मुझे लेने आ रहा है? वो मुस्कुराते हुए बुदबुदाई, झलक, मैं नहीं जानती कि तुमने बॉडीगार्ड और प्राइवेट जेट कैसे अरेंज किया, लेकिन अगर तुम जिंदा बचकर लौटी हो सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए, तो इस बार तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा हुआ तुम जिंदा वापस आ गई, अब तुम मेरे खुशहाल परिवार को देखोगी और समझ जाओगे कि तुम्हारी कोई जगह नहीं है। खुशी में उसकी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर वो किसी जंग की तैयारी कर रही हो। जल्द ही उसने अपनी सबसे खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेस निकाली और तैयार होने चली गई ताकि सिद्धार्थ के साथ पूरे शहर में शान से घूम सके।
वहीं दूसरी ओर झलक और आदित्य राणा की गाड़ी जल्द ही मल्होत्रा मेंशन के ठीक सामने आकर रुकी। झलक गहरी नींद में सो चुकी थी। दरअसल वो सोई नहीं थी बल्कि मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी थी। वो लगातार यही सोचती रही थी कि आगे उसे किस तरह सब लोगों से डील करना है, और सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। आदित्य ने जब उसे यूं सोते हुए देखा तो वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसके चेहरे पर एक मासूम सुकून था, बिखरे हुए कुछ बाल उसके गालों पर आ गिरे थे। एक पल को आदित्य का दिल चाहा कि वो अपनी उंगलियों से उसके बालों को धीरे से पीछे कर दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। झलक इतनी गहरी और सुकून भरी नींद में थी कि उसे जगाना उसे सही नहीं लगा। आदित्य गाड़ी में ही बैठा रहा, उसने उसे छूने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ उसे देखता रहा। आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत गया लेकिन वो उसे जगाने का साहस नहीं कर पाया। वो बस इंतजार करता रहा कि शायद झलक खुद ही जाग जाए। उधर दादाजी अपनी बालकनी में खड़े होकर काफी देर से गाड़ी को बाहर खड़ा देख रहे थे। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे, आदित्य गाड़ी से बाहर क्यों नहीं निकल रहा, कहीं दोनों में फिर से कोई बहस तो नहीं हो गई, कहीं झलक ने अपना सारा गुस्सा उस पर उतार तो नहीं दिया। ये सोचकर दादाजी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। वो दबे पांव गाड़ी की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे और अंदर का दृश्य देखा, आदित्य बड़ी ही शांति और अपनापन भरी नजरों से सोती हुई झलक को देख रहा था, दादाजी के चेहरे पर अपने आप एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो उसी तरह चुपचाप वापस मुड़ गई जैसे आए थे। वो उन दोनों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। कहीं ना कहीं उन्हें आदित्य के लिए एक अच्छी सी फीलिंग आने लगी थी। वो शुरू से ही सब कुछ जानते थे। आदित्य राणा हर मायने में एक परफेक्ट जेंटलमैन था। उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उसकी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई। ऐसा नहीं था कि कोशिश नहीं हुई, बल्कि उसके दादाजी तो हर हफ्ते किसी न किसी लड़की के साथ उसकी मीटिंग फिक्स कर देते थे। आदित्य को सख्त इंस्ट्रक्शन होते थे कि उसे उन लड़कियों से मिलना ही होगा, वरना उसके दादाजी बलवीर राणा बहुत गुस्से में आ सकते थे और अपना सारा गुस्सा उसी पर उतार सकते थे। लेकिन आज पहली बार आदित्य किसी लड़की को इस तरह देख रहा था, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी दबाव के, सिर्फ अपने दिल की वजह से।